आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक दुआ है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। हमारे आज के चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। सो आइए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन, महेंद्र बाय नेम। तो ये जो कहानी है ये एक महेंद्र नाम के आदमी जो है वो सुना रहा है एक गणेश नाम के आदमी को। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. तो हमें पता लगता है कि ये जो महेंद्र है ये एक जूनियर सुपरवाइजर की नौकरी करता है और इसका काम क्या है, जिस भी जगह पे कुछ काम हो रहा होता है इसको एक हेड बनके देखना होता है कि काम सही हो रहा है कि नहीं। महेंद्रा's job was to keep an eye on the activities at the work site. तो महेंद्र का जो काम था, जो भी जगह पे काम चल रहा है वो काम सही से हो रहा है कि नहीं ये देखना महेंद्र का काम था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. महेंद्र को अपनी जगह छोड़ के इधर उधर नई जगहों पे जाना पड़ता था जैसे उसे अपने हेड ऑफिस से बताया जाता था। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from thereafter a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. तो हमें बताते हैं कि किसी coal mining मतलब जहाँ पे कोयला निकल रहा है जमीन से, वैसी जगह से लेके कहीं पे रेलगाड़ी के tracks बन रहे हैं वहां तक अलग अलग जगहों पर उसे जाना पड़ता था। He was a bachelor, मतलब वो अकेला रहता था, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. तो हमें पता लगता है कि जो महेंद्र था उसकी जरूरतें थी वो बहुत सिंपल सी थी, बहुत आसान सी थी। वो किसी भी जगह में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, चाहे वो घर की हालत खराब हो या कोई और परेशानी हो वहां पे। But one asset he had was his cook, Ishwaran. तो जो महेंद्र के पास एक सबसे बड़ी हेल्प थी, जो एक सबसे अच्छी चीज थी वो थी उसका कुक, मतलब उसके घर में खाना बनाने वाला बावर्ची, जिसका नाम क्या था, Ishwaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. तो हमें क्या पता लगता है, जो महेंद्र का कुक था, जो उसके घर में खाना बनाता था, जिसका नाम Ishwaran था, वो महेंद्र से बहुत जुड़ा हुआ था और वो बिना कुछ कंप्लेन किए, मतलब बिना कुछ बोले कि इतना ज्यादा शिफ्टिंग क्यों होती रहती है, वो जहां भी महेंद्र जाता उसके साथ चल देता। He cooked for महेंद्र, washed his clothes and chatted away with his master at night. जो Ishwaran था वो Ishwaran महेंद्र के कपड़े धोया करता था, उसके लिए खाना बनाता था और रात को अपने मास्टर से, मतलब जिसके यहाँ वो काम करता है जो कि महेंद्र है, उससे बातें भी किया करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on various subjects, on varied subjects. जो Ishwaran था वो बहुत सारी लंबी लंबी कहानियां सुना दिया करता था और anecdotes, anecdotes मतलब हंसी के छोटे किस्से, वो ऐसी छोटी छोटी हंसी की कहानियां भी सुनाया करता था। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, seemingly out of nowhere, in the middle of a desolate landscape, with no shops visible for miles around. तो जो Ishwaran है, उसके पास एक बहुत अच्छी आदत क्या थी, वो किसी भी कैसी भी जगह पर हो, पर क्योंकि उसका काम खाना बनाने का था, तो इसलिए वो कहीं से भी सब्जियां और मसाले ढूंढ ले आता था। Desolate मतलब कोई बहुत ज्यादा खाली जगह जहां लोग ना हो, मतलब कैसा भी डेसोलेट लैंडस्केप हो, मतलब कितनी भी खाली वीरान जगह हो, जो Ishwaran था वो खाने के सामान ढूंढ ही लेता था। He would miraculously conjure up the delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at new workplace. तो जो Ishwaran था, miraculously मतलब एकदम ही अचानक से, एकदम ही अचंभे के साथ, जो चीज हो ना सके, कोई ऐसी चीज, कोई चमत्कार होने को क्या कहते हैं, miraculously, वो बहुत ही टेस्टी खाना बना दिया करता था एकदम ताजी सब्जियों से, चाहे कैसी भी जगह पर वो जाकर पहुंचे हों। Mahendra would be up early in the morning and leave for his work after breakfast, carrying some prepared food with him. Mahendra को सुबह जल्दी उठने की आदत थी और वो सुबह नाश्ता करके यानी कि ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए थोड़ा बहुत खाना लेके निकल जाया करता था. Meanwhile, Iswaran would tidy up the sheets, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. और Iswaran की क्या आदत थी, जब महेंद्र चला जाता था Iswaran घर साफ करता था, कपड़े धोता था, एक अच्छा सा leisurely bath मतलब नाया करता था वो खुशी से, और अपने सर पे पानी की बाल्टियां डालते हुए वो एक प्रेयर भी बोला करता था, मतलब भगवान को याद किया करता था. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और ये सारा काम खत्म करते करते दिन हो जाती थी, खाने का समय हो जाता था. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सो जाया करता था और उससे पहले वो पढ़ता था. द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड ऑफ पेजेस. तो Iswaran पढ़ता क्या था, तमिल थ्रिलर्स, मतलब Iswaran तमिल बोलता था या तमिल पढ़ता था, और ऐसी सस्पेंस की रोमांच भरी जो कहानियां होती हैं उसे वो पढ़ने का बहुत शौक था. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लशेस वुड होल्ड Iswaran इंथ्रॉल. तो जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया जाता था कैरेक्टर्स का और स्टोरी का, Iswaran ये सुन के बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाया करता था. His own descriptions were greatly influenced by Tamil authors that he read. और Iswaran को खुद भी कहानियां सुनाने की आदत थी, तो जैसे वो descriptions और जैसा बताने का अंदाज वो कहानियों में पढ़ा करता था, वो उसी तरीके से अपनी कहानियां भी बताने लगा था. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. तो Iswaran की क्या आदत थी कि अगर वो कोई छोटे से छोटा किस्सा भी बता रहा हो, वो तब भी एकदम ऐसे बताता था मानो कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से विद आईब्राउ सूटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर. तो हमें क्या बता रहे हैं कि Iswaran जो था वो छोटी छोटी कहानियों और छोटी छोटी बातों को भी ऐसे बताता था जैसे बहुत बड़ी चीज हो. इसका एग्जाम्पल क्या दिया है कि अगर उसे बताना है कि एक सड़क पे एक पेड़ गिरा पड़ा है, तो वो उसको कैसे बताएगा, वो बोलेगा द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन. उसके बोलने का अंदाज होगा कि रोड एकदम खाली थी, एकदम वीराना था, और मैं वहां पर एकदम अकेला. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस पशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड. और फिर वो कहता कि मैं वहां पे अकेला था और मैं चल रहा था, और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा दानव जैसा कोई राक्षस रोड पर गिरा पड़ा है. आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक. मैं मुड़कर झुककर उसे देखने लगा, बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट. और फिर वो क्या कहता, अरे जब मैंने उसके पास जाके देखा तो वो तो एक टूटा हुआ पेड़ निकला. महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू Iswaran's टेल्स अनक्रिटिकली. और महेंद्र Iswaran की ऐसी कहानियां अपनी चेयर में आराम से बैठकर पीछे झुककर सुना करता था. द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, Iswaran वुड बिगिन. तो Iswaran ने कहानी सुनाने लगा कि मैं जिस गांव से आता हूं ना, वो टिम्बर के लिए बहुत फेमस है. There is a richly wooded forest all around. तो कहता मेरे घर के पास एक बहुत ही घना जंगल है. The logs are hauled onto the lorries by elephants. तो कहता है जो log of wood है, log of wood क्या होते हैं, पेड़ की टहनियां. पेड़ को जब काट देते हैं तो जो डंडे बनते हैं पेड़ के, जो लंबी लंबी लकड़ियां बनती हैं, उसको हम बोलते हैं logs of wood. उनको lorries पर elephants यानी कि हाथियों के help से चढ़ाया जाता था. They are huge well fed beasts. वो कहता है एकदम ही जैसे बड़े बड़े दानव होते हैं ना, एलिफेंट्स वैसे ही दिखते थे. When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. तो वो कहता है जब एलिफेंट्स को गुस्सा आ जाता था और वो वाइल्ड हो जाते थे, तब जो महावत होते थे मतलब जो एलिफेंट को ध्यान रखते हैं एलिफेंट का, वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते थे. आफ्टर दिस प्रोलॉग Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. और इतनी सी बात बताने के बाद ईश्वरन एक बड़ी हंसी वाली कहानी लेकर बैठ गया बताने को. वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन बशेस टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल. तो वो बताने लगा एक दिन एक टस्कर जो एलिफेंट्स हैं उनको टस्कर बोला जाता है. और एलिफेंट को टस्कर क्यों बोला जाता है, क्योंकि एलिफेंट के जो दो दांत होते हैं उसको टस्क कहते हैं, इसीलिए एलिफेंट को टस्कर बोला गया. वो कहता है कि वो टिम्बर का जो यार्ड है मतलब टिम्बर का जो बागीचा है वहां पे भाग गया और वहां के सारे जो पेड़ पौधे लगे हैं उन सबको तहस नहस करने लगा. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड. तो वो कहता है सर आपको पता भी है जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसी हरकतें करता है. ईश्वरन वुड गॉट गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट. ईश्वरन अपनी कहानी बताते बताते इतना ज्यादा एक्साइटेड मतलब इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता अपनी खुद की कहानी से ही कि वो खड़ा हो जाता था और एकदम एलिफेंट की तरह ही अपने पैर जमीन पे जोर जोर की मार के एकदम एक्साइटमेंट से और पूरे फील से कहानी बताने लगता था. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स ही वुड कंटिन्यू. तो वो कहता ऐसे करता करता हमारा जो टाउन है मतलब जहां पे मैं रहता था उसके एकदम बाहर वाली जगह पर वो आ गया था. जितनी भी फेंसेस थी मतलब जितनी भी लकड़ी से बनाए गए एक तरीके से रोक लगाई जाती है उसको उसने ऐसे तोड़ दिया जैसे माचिस की तिल्लियां लगी हूं. इट केम अप टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लोथ्स. तो वो कहता वो ऐसा करता करता मेन रोड पर आ गया और जितने भी स्टॉल्स लगे थे मतलब जितने भी दुकानें लगी थी फल फ्रूट की मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनकी घड़ों की और कपड़ों की उन सबको उसने तहस नहस कर दिया. पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. लोग तितर बितर होने लगे पैनिक और डर के कारण. द एलिफेंट नाउ एंटर द स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल. तो वो जो एलिफेंट था मतलब जो हाथी था वो अब एक स्कूल में घुस गया एक स्कूल की दीवार को तोड़ता हुआ और वहां बच्चे खेल रहे थे. ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लास रूम्स एंड शट द डोर्स टाइट. तो जितने भी बच्चे वहां खेल रहे थे वो ग्राउंड से भाग गए और अपनी क्लासेस में जाके बंद हो गए. द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट एंड किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वॉटर. तो जो एलिफेंट है जो हाथी है उसको एक बीस्ट यानी कि एक दानव का एक डरावने से बड़े से दानव का नाम दिया गया है क्योंकि वो इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था. उसने फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसे निकाल फेंका जो वॉलीबॉल नेट का उसे फाड़ दिया और जो भी पानी रखा था ड्रम में भर के उन सबको तहस नहस कर दिया. मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द depredations ऑफ द एलिफेंट. और इसी बीच जितने भी स्कूल के टीचर्स थे मतलब जो स्कूल में पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स थे वो सारे स्कूल की छत पर चले गए और वहां से वो कुछ कर तो सकते नहीं थे पर वो देखने लगे कि एलिफेंट क्या तहस नहस मचा रहा है. इधर एक वर्ड दिया गया depredations. depredations का मतलब किसी चीज को खराब करना किसी चीज को रुइन कर देना और एलिफेंट इन सारी चीजों को खराब कर रहा था इसलिए बोला गया depredations ऑफ द एलिफेंट. There was not a soul below on the ground. ईश्वरन बताता है कि जमीन पर एक भी इंसान नहीं था. इंसान तो क्या कोई जानवर भी ना हो ऐसे खाली पड़ा था वो सिर्फ हाथी था. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. तो वो कहता है जो हमारे जहां पे मैं रहता था वहां की streets मतलब वहां की गलियां ऐसी खाली हो गई थी जैसे वहां पे कोई रहता ही ना हो. I was studying in the junior class at that time. And was watching the whole drama from the rooftop. तो ईश्वरन बताता है तब मैं जूनियर यानी कि छोटी क्लास में पढ़ता था और मैं भी छत से वो सारा ड्रामा देख रहा था. I don't know what came over me suddenly. वो कहता है पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. ईश्वरन कहता है पता नहीं मेरे दिमाग में अजीब सा क्या आया कि मैंने टीचर के हाथ से केन खींची और मैं भागता भागता ग्राउंड में चला गया. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मेनिसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक. तो कहता है एलिफेंट जो है वो जोर की चिंगाड़ा और उसके हाथ में, मतलब हाथ कह रहा हूँ, उसके जो सूंड होती है एलिफेंट की, जिसको हम ट्रंक कहते हैं, उसने उसमें एक एलिफेंट एक ट्री की ब्रांच, मतलब एक पेड़ की टहनी उठा रखी थी, जो उसने उठा के जोर की फेंकी। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। उसने अपने पैर जोर की जमीन पर मारे, जिसकी वजह से बहुत सारी धूल भी उड़ी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग। इस हरन बताता है कि ये बहुत ही डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड। तो कहता है पर फिर भी मैं धीरे धीरे एलिफेंट के पास बढ़ा, अपने हाथ में एक डंडी लिए हुए। पीपल वो वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस स्टेप्स। तो इस हरन कहता है कि लोग इस सीन को, मतलब इस दृश्य को ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया हो, मतलब किसी मैजिक ने उन्हें ये सारा काम देखने के लिए मजबूर कर दिया हो। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आईड एंड रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। जो एलिफेंट था, मतलब जो हाथी था, उसने इस सरन को बहुत गुस्से में देखा और वो भागता हुआ इस सरन की तरफ आने लगा। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली। उसने अपनी सूंड उठाई और वो जोर की चिंघाड़ने लगा। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ट इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक। इस सरन बताता है उसी समय मैं आगे गया, मैंने उसके पैर पूरी अपनी ताकत लगाते हुए, पूरी अपने डर को पीछे छोड़ते हुए, उसके पैर का जो तीसरा नाखून था मैंने उसको उखाड़ के फेंक दिया। द बीस्ट लुक्ड स्टंड फॉर अ मोमेंट देन इट शिफर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। तो इस सरन बताता है कि 2 मिनट के लिए वो हाथी एकदम ही हैरान सा हो गया और वो थोड़ा सा कांपा और फिर नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। और ईश्वरन इतनी कहानी बताने के बाद अचानक से उठ जाता था और बोलता था मैं बस खाने की तैयारी करके आया, लाइट गैस जला के आया, खाना गर्म करके आया, फिर आता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महेंद्र इतने दिल से, इतने अटेंशन से, मतलब इतने ज्यादा दिल से उसकी कहानी सुन रहा था, लेकिन इस सरन बीच में छोड़कर ही चला गया और महेंद्र को वेट करना पड़ा। वेन ही रिटर्न ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। और जब ईश्वरन वापस आता तो उसे याद ही नहीं आता कि इतने कितनी कहानी सुना दी थी। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग। और फिर महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था कि जो कहानी का एंड है, मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वेल अ वेटरिनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। और फिर ईश्वरन बताता कि एक वेटरिनरी डॉक्टर, मतलब एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, मतलब जो जानवरों को ठीक करते हैं, ऐसे डॉक्टर को बुलाया गया और उसने एनिमल को ठीक कर दिया। ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली। ईश्वरन बड़ी आराम से बताया करता। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल। कि 2 दिन बाद एलिफेंट जब पूरी तरीके से ठीक हो गया, महावत उसे वापस जंगल ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तो महेंद्र बड़े ही अचंभे और बड़े ही जिज्ञासा से बोलता है कि अरे ईश्वरन तुमने ऐसा कैसे किया, तुम्हें कैसे पता था उसे कैसे, मतलब गिरा देना है। इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट आई थिंक सर। तो ईश्वरन कहता ये तो एक जापानीज आर्ट है, मतलब जापान से आई गई ये कला है जो मैंने सीखी थी, कराटे और जिजित्सु इट्स कॉल्ड। तो वो कहता है उसका नाम कराटे या शायद से जिजित्सु था। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर। तो कहते हैं मैंने एक जगह पे इसके बारे में पढ़ा हुआ है। इट्स टेम्परेरली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम यू सी। तो इस सरन कहता कि थोड़ी देर के लिए जो नर्वस सिस्टम है वो तो पैरालाइज हो जाता है, मतलब वो चलना बंद कर देता है। नॉट अ डे पास्ट विदाउट इस सरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। तो हमें क्या पता लगता है कि महेंद्र की जिंदगी में एक भी ऐसा दिन नहीं जाता था जब ईश्वरन कोई रोमांच भरी या कोई डरावनी सी या सस्पेंस भरी, मतलब राज वाली कहानी ना सुनाता हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। तो जरूरी नहीं है कि सारी कहानियां सच हो या ना हो, और महेंद्र को फर्क भी नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि जो ईश्वरन के कहानी सुनाने का तरीका था वो इतना ज्यादा अच्छा था कि महेंद्र का बस मन करता था कि ईश्वरन रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करे। Iswaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. और एक टीवी की कमी जो होती है, मतलब जहां पे महेंद्र रहता था वहां पे टीवी नहीं लगा होता था, मतलब टेलीविजन नहीं लगा होता था, पर ईश्वरन की ये सारी कहानियां उस टीवी की कमी को कभी महसूस नहीं होने देती थी। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। तो एक दिन जब महेंद्र सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, सर क्या आज मैं खाने में कुछ खास बना सकता हूँ? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. तो ईश्वरन कहता है कि आज तो एक बहुत खास दिन है हमारे ट्रेडिशन में, मतलब हमारे रिवाज में ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता है। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills. और उस रात को महेंद्र ने बहुत अच्छा खाना खाया क्योंकि ईश्वरन ने इतना बढ़िया खाना बनाया था। महेंद्र ने ईश्वरन के खाना बनाने के तरीके की बहुत तारीफ की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। जो ईश्वरन था वो बहुत खुश हो गया अपनी तारीफ सुन के, पर अचानक से वो एक डरावनी सी कहानी और बड़ी अचंभित करने वाली बात बताने लगा। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started. तो वो कहता महेंद्र को कि सर आपको पता है हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, यहाँ पे पहले लाशों को दफनाया जाता था, ये एक burial ground था। महेंद्र was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. महेंद्र जो कि खाना खाने के बाद इतना ज्यादा रिलैक्स और अच्छा फील कर रहा था, वो एकदम से चौंक गया, एकदम से हैरान हो गया कि ये कैसी कैसी बातें कर रहा है ईश्वरन। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. तो ईश्वरन बताता है कि जब मैं पहले दिन यहाँ पे आए थे, मैंने तो तभी जमीन पे खोपड़ी, मतलब एक इंसान का सर गिरा हुआ देखा था जो कि अब हड्डियों में बदल चुका है, मेरे को तो उसी दिन से भरोसा हो गया था। Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued. और फिर ईश्वरन कहता मैंने तो और भी बहुत सारी हड्डियां और सर देखे यहाँ पे पड़े हुए, ईश्वरन बताने लगा आगे। He went on to narrate how to sometimes saw ghost at night. ईश्वरन बताने लगा कि वो कैसे बहुत सारी रात को यहाँ पे घोस्ट देख चुका है, मतलब भूत देख चुका है। I am not easily frightened by these things, sir. तो ईश्वरन कहता है महेंद्र को कि मैं ऐसे इतनी छोटी छोटी बातों से नहीं डरता। I am a brave fellow. तो वो कहता है मैं तो एक बहुत हिम्मतवर, बहुत ज्यादा हिम्मत वाला आदमी हूँ, मेरे को इन चीजों से डर नहीं लगता है। But one horrible ghost of a woman which appears of and on at midnight during the full moon. तो वो कहता है पर एक बहुत ही डरावना सा एक औरत का भूत है जो जब पूरी चांदनी निकलती है तब आती है सिर्फ। It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face. Like a skeleton holding a fetus in its arms. तो वो कहते हैं वो बहुत ही अजीब सी दिखने वाली भूत है, उसके एकदम सूखे सूखे से बाल हैं, डरावना सा चेहरा और एकदम ही हड्डियों के ढांचे जैसा शरीर है, और ऐसा लगता है उसने हाथों में कुछ पकड़ रखा हो बड़ा सा। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, ईश्वरन. तो महेंद्र जो था वो इस डिस्क्रिप्शन से पे, मतलब जिस तरीके से उस भूत को दर्शाया गया है ईश्वरन के द्वारा, सुन के डर गया और बोला ईश्वरन को कि तुम तो पागल हो। There are no such things as ghosts or spirit. तो वो कहता है ऐसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। It is all a figment of your imagination. तो कहता है तो तुम्हारी जो सोच है ना, जो तुम सोचते रहते हो फालतू की चीजें, उसका एक प्रोडक्ट है। Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. तो महेंद्र कहता है कि ऐसा करो तुम अपना पेट भी ठीक करा लो और अपना दिमाग भी। डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन बोला गया है, ये इसलिए बोला गया है कि एक तरीके से रेफरेंस है कि ईश्वरन जो है उसका दिमाग खराब हो गया है। तो कहता है तुम फालतू की बातें कर रहे हो, अपना इलाज कराओ। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। तो महेंद्र ने उसके बाद सो जाने की सोची और उसने सोचा कि अब थोड़े दिनों तक इस वरन मुंह फुलाए बैठा रहेगा क्योंकि मैंने उसे डांट दी है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगले दिन की सुबह को ईश्वरन वैसे ही खुश और एकदम ही खुश मिजाज था जैसे कि वो हर दिन हुआ करता था, जैसे उसको कोई फर्क ही ना पड़ा हो, क्योंकि वो जानता था कि वो सच बोल रहा है। फॉर दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वॉन्ट वेंट टू बेड विद अ सर्टेन। और उस दिन रात से महेंद्र जब भी सोने जाता था तो उसने बोल तो दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर फिर भी उसे थोड़ा बहुत डर लगा करता था। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। महेंद्र जब भी सोने जाता वो अपने घर की खिड़की से बाहर देखा करता कि क्या कोई डरावने से भूत जैसी चीज तो नहीं बन रही। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्रीज माइल्स अवे। पर महेंद्र को ऐसा कुछ नहीं दिखता, उसको सिर्फ जो दूर फैक्ट्रीज बनी है उनके टिमटिमाने की आवाज आती, मतलब टिमटिमाने की रोशनी दिखती थी लाइट्स की। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क व्हाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। महेंद्र को जब पूरी चांदनी निकलती है तो महेंद्र को रात का नजारा देखने का बहुत अच्छा लगता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टूगेदर वेन द मून वॉज फुल। पर क्योंकि ईश्वरन ने ऐसा बोल दिया था कि एक डरावनी भूत आती है जो कि एक औरत है, तो उस दिन से महेंद्र ने बाहर देखना भी बंद कर दिया था। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम ए स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू द विंडो। और एक रात महेंद्र के खिड़की से कुछ आवाजें आने लगी और महेंद्र एकदम से उठ गया। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर द माइस। पहले महेंद्र ने सोचा कि कोई बिल्ली किसी चूहे को ढूंढ रही होगी, शायद इसलिए ऐसी आवाजें आ रही हैं। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर द कैट। लेकिन जो आवाज थी वो एक बिल्ली की होने की लग नहीं रही थी। अब ही रिजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। और जो महेंद्र है वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और उसने बाहर देखा, और उसने बाहर एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका दिल एकदम रुक ही गया हो। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलिन। और जो आवाजें थी बाहर से जो आ रही थी वो अब तेज होने लग गई और पूरा यकीन होने लग गया कि वो बिल्ली की आवाज तो नहीं है। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। तो जो महेंद्र था वो इस टेम्पटेशन को, मतलब जो उसके दिल में जिज्ञासा जाग रही थी बाहर देखने की, उसे रोक नहीं पाया। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडोज ही लुक्ड आउट एट द वाइड स्ट्रीट ऑफ द मूनलाइट आउटसाइड। जो महेंद्र था वो खिड़की की हाइट तक आया और उसने बाहर देखने की कोशिश की। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। और वहां से थोड़ी दूर एक काले बादल जैसा साया बनने लगा। महेंद्र ब्रोक इन टू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग। महेंद्र ये देखने के बाद बहुत ज्यादा डर गया और वो वापस अपने तकिए पर आकर लेट गया हांफता हुआ एकदम पसीने में। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of an auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. और जैसे जैसे महेंद्र अपने आप को उस डरावने एक्सपीरियंस, मतलब उस डरावने सीन से दूर करने लगा, उसको ऐसा लगा कि ये तो सिर्फ मेरे दिमाग की कोई बात है, क्योंकि इस अरन ने डरावनी सी कहानी सुनाई थी ना, इसलिए शायद मैं ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ असली में नहीं हुआ है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग हैड अ बाथ एंड केम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। और अब जो महेंद्र है वो सुबह उठा, उसने नहाया वो, और उसके बाद उसने नाश्ता किया, वो जो पिछले रात की जो भी डरावनी सी बात उसके साथ हुई थी महेंद्र के साथ, महेंद्र ने सोचा उसे भूल जाना ही अच्छा है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। तो ईश्वरन महेंद्र के खाने के बाद महेंद्र को घर के दरवाजे पर मिला उसके खाने का पैकेट और ऑफिस का बस्ता देते हुए। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रिंड एंड सेड। और जैसे ही महेंद्र ऑफिस जाने लगा था ईश्वरन ने एकदम से बोला, सर Remember the other day I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. तो ईश्वरन कहता है, सर आपको याद है मैंने आपको बताया था कि एक भूतनी आती है, पर आपने मेरे को बोला ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन कल रात को तो आपने देखा भी अपने आप को जिसको। I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room. उसने बोला आपके रूम से जो डरावनी सी आवाजें आ रही थी उनको सुनता हुआ मैं भी भाग के आपके रूम के पास आया था। A chill went down Mahindra's spine. और इस सरन की ये बात सुनकर महेंद्र बहुत ज्यादा डर गया। He did not wait for Iswaran to complete his sentence. महेंद्र ने ईश्वरन की बात पूरी होने का भी इंतजार नहीं किया। He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. महेंद्र भागता हुआ अपने ऑफिस पहुंचा और उसने पूरा मन बना लिया कि हम अगले दिन यहां से चले जाएंगे क्योंकि ये जो जगह है बहुत डरावनी है। द स्टोरी इज रिटन बाय आर के लक्ष्मण। ये जो कहानी है ये आर के लक्ष्मण ने लिखी थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कहानी कैसी भी हो, सच्ची हो, झूठी हो, बोरिंग हो, अच्छी हो या ना हो, लेकिन जिस तरीके से वो कहानी बताई गई है, जिस तरीके से वो समझाई गई है, उससे फर्क पड़ता है। जैसे कि जो ईश्वरन ने बात बताई थी कि वहां पे भूत रहते हैं जहां पे वो रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये बात सच हो, और हो सकता है शायद ये बात झूठी हो, लेकिन जिस भरोसे से और जिस बात जिस तरीके से ईश्वरन ने महेंद्र को एक कहानी बताई, महेंद्र के दिमाग में ये चीज बैठ गई और इसीलिए उसको इस बात पर यकीन होने लगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है जिसका नाम था ईश्वरन द स्टोरी टेलर। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।